पर दिल ये जूम जाता है। यही है जिसकी तलाश थी,
यही है जिसकी तलाश थी। जग सारा मिल जाता है, हर दिल ये झूम जाता है।
जग सारा मिल जाता है, हर दिल ये झूम जाता है। जिसके गीत गाए दर दर भटके ठोकर खाए।
आज मिल गया हमें हमारा मिलन की जिससे आशिकी, हमें मिल गया प्राणों से प्यारा, अब तक जिसकी तलाश थी।
यही है जिसकी तलाश थी,
यही है जिसकी तलाश थी। जग सारा मिल जाता है, दिल ये झूम जाता है।
जग सारा मिल जाता है, हर दिल ये झूम जाता है।
ओम शांति। तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक नवयुवक एक रात स्वप्न देखता है। वो देखता है दूर मिस्र में, इजिप्ट में एक शहर है, और स्वप्न में उस शहर का पूरा नाम उसे दिखाई देने लगता है, कायरो। और उस शहर के रास्ते दिखाई देने लगते हैं, और उन गलियों में एक घर भी दिखाई देने लगता है। और स्वप्न में वो देखता है कि वो घर कैसा है। उस घर के अंदर वो झांक कर देखता है, स्वप्न में वो सारा घर दिखाई देने लगता है। और देखता है उस घर के एक बड़े से कमरे में एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा हुआ है कुर्सी पर, और वो सारे कमरे में खजाने ही खजाने, हीरे जवाहरात मानिक मोती सब कुछ, वो सारा कमरा खजानों से सजा हुआ है। और उसे ऐसा लगता है कि ये सारा खजाना मेरा है। वो जब सुबह उठता है तो बस अब एक ही धुन सवार है, इस शहर तक पहुंचना है, उस घर तक पहुंचना है, उस कमरे तक पहुंचना है जिसमें ये सारा खजाना छिपा है या दिखाई दे रहा है। तो वो सही में तैयारी करता है वहां जाने की, और अंतर बहुत लंबा है, कई मास उसको लग जाते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते। पर आश्चर्य, जैसे ही वो पहुँचता है उस शहर कायरो के पास, वो देखता है स्वप्न में जैसा देखा था वह सब कुछ वैसा ही है। वो देखता है वहाँ की गलियाँ वैसी ही है जिस जो उसने स्वप्न में देखी थी, और आगे बढ़ता है और पाता है वो घर भी वैसा ही है जैसा स्वप्न में देखा था। घर पर दस्तक देता है, घर के अंदर प्रवेश करता है, घर वैसा ही है, वही सारे चित्र, वैसी ही खिड़कियां, वैसे ही पर्दे, वैसे ही कमरे जो उसने स्वप्न में देखे थे। और अंदर जाता है, एक बड़ा सा कमरा जो उसने स्वप्न में देखा था यही है, और वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है, परंतु एक अंतर है, खजाने नहीं है यहां पर। जो स्वप्न में खजाने देखे थे वो यहाँ नहीं है। तो उस बूढ़े व्यक्ति से वो कहता है कि मैं ऐसे ऐसे इस्तांबुल तुर्की से आया हूँ, और मैंने स्वप्न में ये सब देखा, ये सब कुछ वैसा ही है, आपको भी देखा, पर अंतर यह है कि यहाँ खजाने नहीं है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैंने भी एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में मैंने देखा बहुत दूर तुर्की में इस्तांबुल नाम का एक शहर है और वहां पर एक घर है, और जैसे इस युवक का घर है बस उसी घर को वो बताता है, ये घर मैंने देखा, फिर ऐसे ऐसे चित्र है जैसे इसके घर में थे, फिर ऐसे उसके माँ बाप है, बहन भाई है जो इसके माँ बाप और बहन भाई है, और वो कहता है वहां एक कमरा है जो इसका कमरा है, और वो कहता है मैंने देखा कि उसके कमरे में एक खटिया है, बस उस खटिया के पास ही खजाना छिपा हुआ है, और जैसे अब तुमको मैं देख रहा हूं वो तुम तो वही युवक हो जिसको मैंने स्वप्न में देखा। तब थोड़ा सा प्रकाश अंदर जागता है और वो युवक वापस आ जाता है। उसे शायद जीवन का कोई एक राज समझ में आता है कि जो खजाना ढूंढने में वहां गया था वो वहां नहीं है, कहाँ है, यही है जहां से निकला था। इस कहानी को लोग अलग अलग ढंग से सुनाते हैं, कोई ऐसे भी सुनाता है कि जब वो वापस आता है तो जहां वो रहता था उसको उस जमीन को खोदता है तो वहीं उसको खजाना मिल जाता है। कोई ऐसे सुनाते हैं कि वो व्यक्ति जिसने, वो बूढ़ा व्यक्ति, कोई योगी आत्मा, कोई संत पुरुष थी जिसने उसे ये शिक्षा दी कि तुम यहां कहां आ गए, खजाना यहां नहीं है, खजाना वहीं गड़ा है जहां तुम रहते हो, इसलिए तो मुझे भी ऐसा स्वप्न दिखा। कोई ऐसा सुनाते हैं कि इसने सोचा खजाना वहां है और वो सोचता है खजाना उसने देखा यहां है, खजाना कहीं पर भी बाहर नहीं है, सारा खजाना कहां है, अंदर ही छिपा है। बाहर जो है वो एक परछाई मात्र है, वास्तविक खजाना हमारे अंदर है। आज सुबह की साकार मुरली, तुम्हें कौन सा खजाना मिला है? ये पढ़ाई बहुत मीठी है, सोर्स ऑफ इनकम है। नेक्स्ट लाइन, आज की मुरली, तुम्हें कारून का खजाना मिला है। क्या मिला है तुमको? कारून का खजाना मिला है। तो आज हम इसी कारून के खजाने की चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो यह है, ये कारून था कौन? कारून एक राजा था जिसके पास इतनी धन संपदा थी, इतनी धन संपदा थी कि कहा जाता है उस खजाने की जो चाबी थी उसको उठाने के लिए 30 लोग लगते थे, पर बहुत घमंडी था, और उसने कुछ ऐसे कर्म किए कि उसे शाप मिल गया और वो सारा खजाना जमीन दोस्त हो गया, और कहा जाता है जो भी उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करता है मर जाता है। 7 लोगों ने कोशिश की थी, वापस नहीं लौट पाए। कारून राजा था ईसा के 560 वर्ष पूर्व, लीडिया शहर जो कि इस समय पश्चिमी टर्की है, उस लीडिया नाम के जगह का वो राजा था। और इस कारून का नाम इतना प्रसिद्ध है कि कुरान में भी इसका नाम आया है, और कुरान में वहाँ नाम आया है उसका कि ये वो एक राजा था कि जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, कुफ्र किया, मूसा जो था मोसेस उसको नहीं सुना, और इसके वजह से अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हुआ और वो और उसका घोड़ा जमीन में धस गए। कुरान में इसका वर्णन है, चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 76-83 तक 7 आयतें हैं इस कारून के बारे में। कुरान में सूरा नंबर 28 में 76 से लेके तो 83 तक 7 सूरा, जिसको हम हिंदी में श्लोक कहते हैं, कुरान में आयतें कहा जाता है, यहां स्कंद कहा जाता है, वहां सूरा कहा जाता है, चैप्टर। तो ये जो राजा था उसके पास इतनी संपत्ति थी पर बहुत ज्यादा घमंडी था और वो सब कुछ खत्म हो गया। परंतु उसका नाम आज तक भी लिया जाता है एज रिच एज क्रोशस। इंग्लिश में उसे क्रोशस कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं। और जब भी धन की बात आएगी और जिसके पास बहुत धन है उसे हमेशा कहा जाता है जैसे कि कारून है, ये जैसे कि किंग क्रोशस है। भारत में एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम लिया जाता है कुबेर, रावण का भाई, जिससे रावण ने लंका छीन ली थी और खुद अपना आधिपत्य स्थापित किया था। खजानों का खजांची कुबेर या मालिक। तो आज की मुरली में है, तुम्हें क्या मिला है? कारून का खजाना अर्थात अथाह खजाना, अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता, इतना तुमको खजाना मिला है। तो तीन प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहला, हमें कौन कौन से खजाने मिले हैं? भक्ति मार्ग में 9 खजानों का गायन है, यहां पर भी 9 निधियां हैं इस ज्ञान मार्ग। दूसरा प्रश्न, इन खजानों की विशेषताएं क्या क्या है? और तीसरा प्रश्न है, इन खजानों का करना क्या है? तो इन तीन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो हमें 9 खजाने मुख्य मिले। वैसे खजाने अनगिनत है क्योंकि खजानों का सागर ही हमको मिल गया है। और हमारा सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? ज्ञान का खजाना। आज वरदान में क्या कहा बाबा ने? क्या करना है इस ज्ञान के खजाने का? दान करते रहो, महादान करते रहो, बढ़ते जाएगा। तो ज्ञान। दूसरा खजाना गुण। तीसरा खजाना शक्तियां। आत्मा शक्तिहीन हो गई है, आत्मा में पावर ही नहीं रही है। बैटरी कैसे हो गई है? डिस्चार्ज। इसके लिए आज की मुरली में कहा, बैटरी फुल करनी है तो क्या करो? आत्मा की बैटरी गुल हो गई है, अब आत्मा की बैटरी फुल करनी है तो क्या करो? देही अभिमानी और बाप की याद, ये 2 काम करो तो बैटरी फुल हो जाएगी। चौथा खजाना है समय का खजाना। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, इन्वर्टेड कॉमा, जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। हमारी दिनचर्या का हमारा समय कहीं पर भी व्यर्थ न जाए। तो चौथा खजाना कौन सा है? समय। पांचवा खजाना संकल्प। हमारी दिनचर्या संकल्पों की एक इमारत है। भगवान के महावाक्य अव्यक्तवाणी 1991, ज्ञान सरोवर में रहने वाले हंसों की स्थिति बताओ समर्थ होगी या व्यर्थ? ज्ञान सरोवर अर्थात यहां नहीं, ज्ञान सरोवर में अर्थात जो ज्ञान मान सरोवर में रहते हैं उनकी स्थिति, रहने वाले होली हंसों की स्थिति बताओ समर्थ होगी या व्यर्थ होगी? समर्थ, क्योंकि निरंतर ज्ञान का चिंतन चालू है। तो हमारा पांचवा खजाना कौन सा है? समय, संकल्प। संकल्प को व्यर्थ नहीं करने हैं। एक बाप दूसरा ना कोई पर्दे के पीछे कोई चूहा कोई बिल्ली तो नहीं है संडे की मुरली। बाप की गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, बातों की गहराई में नहीं जाओ। क्यों आई, कैसे आई? लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली कहां से आई? यहां से आई कि वहां से आई? ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों कहा, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आज की मुरली धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर टू क्या है? ये ड्रामा बनाया है, इसमें कोई भूल नहीं है, इसको बुद्धि में अच्छे से समझाओ अपने आप को, दिमाग में, तो गुस्सा नहीं आएगा। आ जाए ना, तो संकल्पों का महत्व है। अगला खजाना है पुण्य कर्म। मुरली में आया है भगवान के अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, तुम्हें दैवी कर्म करने हैं ना कि भ्रष्ट कर्म। सारे दिन भर क्या कर्म किए, भ्रष्ट कर्म किए या दैवी कर्म किए? भ्रष्ट कर्म करोगे तो भ्रष्ट बनोगे। कौन से कर्म हमने किए अपने आप को देखना, दैवी थे या भ्रष्ट थे? और कर्म का संबंध संकल्पों से। अगला खजाना है पुण्य कर्मों का खजाना। आज सारे दिन में पाप तो नहीं हो गए? शरीर को देखना अर्थात पाप, अपने या दूसरों के, अपने या दूसरों के। अव्यक्त मुरली है बाबा की, 24 जनवरी 1974, शक्ति सेना का मुख्य लॉ। इस शक्ति सेना का एक ही मुख्य लॉ है, अगर उस लॉ को फॉलो नहीं किया तो शक्ति सेना से बाहर। और वो लॉ है ना अपने ना किसी और के शरीर को देखना, न देखना, ये शक्ति सेना का लॉ है। अगला खजाना पुण्य कर्म, अगला खजाना दुआएं। क्या प्राप्त करनी है? सबसे दुआएं। और दुआएं मांगने से नहीं मिलती है, श्रेष्ठ कर्मों से, आत्माओं की सेवाओं से स्वतः मिलेगी। अगला खजाना है खुशी, आठवां। कोई भी हमारी खुशी छीन कर न ले जाए। कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको? कल की साकार मुरली, कापारी खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको? और कितनी होनी चाहिए? नाखून से लेके तो एड़ी से लेके तो चोटी तक, और कितनी खुशी होनी चाहिए? तुम्हारी नस फट जानी चाहिए दिमाग की, और कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको? रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए तुम्हारे, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, रोआ रोआ खुशी से, खुशी की पुलक से भर जाना चाहिए, और कितनी खुशी होनी चाहिए? जैसे साकार मुरली, जैसे कोई पत्नी है और जिसका पति दूर चला गया और पति आ गया, कैसी बावरी होके रास्ते से घूमती है, दौड़ती है, वैसी खुशी तुमको होनी चाहिए। और कैसी खुशी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए खुशी? खुशी कैसी होनी चाहिए तुम्हारी? खुशी खुशी कैसे होनी चाहिए? हाँ, खुशी कैसे होनी चाहिए? जैसे प्यासे को पानी मरुस्थल में, कोई झरना तपती धूप में, शीतल झरना जैसे किसी को मिल जाए, ऐसी खुशी तुमको होनी चाहिए। तो खुशी हमारा खजाना है, और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खजाना पवित्रता। हमारा सबसे महत्वपूर्ण खजाना है पवित्रता। हमारी जायदाद है पवित्रता, प्रॉपर्टी है पवित्रता, स्टेट हमारी सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो प्यूरिटी के हाई लेवल पर स्थित रहना हमेशा। नीचे आए तो नीचे शरीर है, गंध है। आज क्या कहा दुनिया के लिए? ये क्या क्या कहा आज? आज कुछ कहा ना ऐसा? कलकत्ता बहुत खराब मुल्क है, गंदा, कौन सा धंधा बंद करो? विकारी धंधा बंद करो, अब अपनी उन्नति करो, मुरली में आया है। जाकर उनको समझाओ कि अब विकारी धंधा बंद करो और स्वयं की उन्नति करो। भविष्यवाणी कर दी आज एक, क्या होगा? कहाँ म्यूजियम बनेगा? गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम बनेगा, उसी के बाद की लाइन है। उनसे कहो जाकर ये विकारी धंधा बंद करो और स्वयं की उन्नति करो। तो ऐसे नौ खजाने, अमृत वेला सारे खजानों को इधर भरना है, ज्ञान से भरना है, गुणों से भरना है, सारी शक्तियों से भरना है, और जितनी आठ शक्ति है उन आठ शक्तियों के नाम अमृत वेला एक बार रिवाइज करना कि मुझ में सहन करने की शक्ति आ रही है, सामना करने की शक्ति आ रही है, सहयोग की शक्ति आ रही है, समेटने की शक्ति आ रही है। एक एक शक्ति का नाम लेकर उन शक्तियों को अंदर भरते जाना, भरते जाना। मैं, मेरी परखने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण हो रही है, निर्णय करने की शक्ति सटीक हो रही है, एक एक शक्ति में मैं भरपूर हो रहा हूं। तो तीसरा खजाना है शक्तियां, चौथा खजाना है समय। कोई आ ना जाए और हमारा छीन कर समय ले ना जाए, किसी की इतनी मजाल ना हो कि हमारा समय वेस्ट करके चला जाए। हमारा समय अपना है, अपने समय पर कुंडली मारकर बैठ जाना है। अगर कोई आया हमारा समय कोई ना चुरा पाए, ऐरा घेरा नत्तू खेरा। अगला खजाना संकल्प। संकल्पों को महान बनाने के लिए ज्ञान का बहुत बहुत गहरा अध्ययन, गहरे अध्ययन की आवश्यकता है, तो ही संकल्प ऊंचे रहेंगे, नहीं तो संकल्पों का स्वभाव है नीचे आ जाना। रावण को तुमने बहुत प्यार किया, क्या मिला रावण के प्यार से तुमको? आज की मुरली, बंदर बन गए तुम। रावण ने तुमको प्यार किया तो तुम क्या बन गए? बंदर। बाप तुमको समझाते हैं, गाली थोड़ी देते हैं। संकल्पों का खजाना। अगला पुण्य कर्म। सारे दिन भर में पुण्य कर्म होते रहे, पुण्य कर्म करने की हॉबी। अगला खजाना दुआएं, असंख्य आत्माओं की दुआएं। फिर उसके बाद में खुशी, दिन रात खुशी, इतनी खुशी कि आजकल पाँव जमीन पर नहीं रहते मेरे। बताओ तुमने कहीं देखा है मुझे उड़ते हुए? नीचे रहना ही नहीं है, उड़ते रहना है खुशी के मारे। खुशी में क्या करना है? खग्गिया मारना है, ये तो बोला ही नहीं पहले। गदगद। और सबसे बड़ा खजाना पवित्रता। तो ऐसे ही नौ निधियां है, नौ खजाने हैं, अष्ट शक्तियां और नव निधियां। अष्ट शक्ति नवनिधि के दाता, असबरदी न जानकी माता। हनुमान को हाथ रख दिया बस जानकी ने, और उसको सारी शक्ति आ गई और नव निधियां उसको प्राप्त हो गई। हमारी भी ये ज्ञान मार्ग के नौ खजाने हैं। तो अमृत वेला अनुभव करना कि भगवान ने हाथ रख दिया और सारे खजाने अंदर। तो ये सबसे पहला प्रश्न था कारुण के खजानों में कौन कौन से खजाने। दूसरा प्रश्न है इन खजानों की विशेषता क्या है, ये खजाने कैसे हैं? अखूट। ये खजाने कैसे हैं? अविनाशी। ये खजाने कैसे हैं? अनमोल। ये खजाने कैसे हैं? अदृश्य। ये खजाने कैसे हैं? गुप्त। ये खजाने कैसे? अनंत, अविनाशी। ये सब समानार्थी है, दूसरा बताओ। हाँ, ये खजाने वैसे है कि जितना बांटो उतने बढ़ते। ये खजाने ऐसे है कि इसे चोर चुरा नहीं सकता, डाकू इसे लूट नहीं सकता। ये खजाने ऐसे है कि इसका कोई भय नहीं है कि चोरी हो जाए, कहीं पर भी लेके जाया जा सकता है। वो खजाने कहीं पर भी नहीं लेके जा सकते, डर रहेगा चोरों का। और इन खजानों की विशेषता, ये खजाने केवल एक परमात्मा से ही प्राप्त होते, किसी भी देहधारी से ये खजाने नहीं मिल सकते। और ये खजाने किसी जमीन में गड़े हुए नहीं है कि निकल पड़ो और ढूंढो, जैसे उस युवक की बात बताई थी, बेचारा निकल पड़ा और मिला कुछ भी नहीं, उसको पता चला कि वो तो वही है। खटिया के अंदर। उसी तरह एक दूसरी भी कहानी है, इस वर्तमान युग में बड़ी प्रसिद्ध किताब है, एल्केमिस्ट पौले कोहलो की एल्केमिस्ट। उसमें एक चरवाह है सेंशियागो जिसका नाम है, बेचारे खंडर में रहता है, एक चर्च का, पैसे नहीं है, और उसको पता चल जाता है एक खजाना मिस्र के पिरामिड्स के नीचे दबा है, और उसकी पूरी यात्रा का वर्णन है। अलग अलग लोग उसको अलग अलग समय पर मिलते हैं, और अंततः उसे खजाना मिलता है वहां पर डाकू आते हैं, वो सारा खजाना उससे छीन लेते हैं, और उसको कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए? वो कहते हैं मुझे तो स्वप्न दिखा था। वो उसको कहते हैं ये खजाना कुछ नहीं, असली खजाना तो वहां है, और जो एड्रेस वो बताते वो उसी का घर था, वो जिस खंडर में रहता था उसी के नीचे खजाना था। और वो आता है, ढूंढता है, उसे मिल भी जाता है। तो खजाना कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही है। तो ये खजाना बाहर नहीं मिलता, ये कहां मिलता है? आंतरिक। ये खजाना आत्मिक खजाना है, आत्मा का खजाना है, शरीर का खजाना नहीं है। और इस खजाने की विशेषता सदा रहने वाला, अविनाशी और पद्मापदम भाग्यशाली बनाने वाला है। और जिसके पास ये खजाना रहता है वो बहुत खुश रहता है। और ये खजाना बड़ा ही सूक्ष्म और बड़ा ही इतना सूक्ष्म है कि जब आत्मा में भरता है तब भी दिखाई नहीं देता है, और जब आत्मा खाली हो जाती है इस खजाने से तब भी दिखाई नहीं देता है। परंतु इस खजाने के आधार पर व्यक्ति की स्थिति है। पवित्रता का खजाना छिन गया, आत्मग्लानी से पीड़ित होता है व्यक्ति, अपराध भाव से पीड़ित होता है, दिल खोखला हो जाता है, खाते रहता है, परेशान रहता है, और ऊपर से सब कुछ चालू है ठीक ठाक, पर अंदर से खाली खाली महसूस करता है। खुशी का खजाना गुम हो गया, उदास गमगीन है। समय का खजाना चला गया, कोई आया और उसने हमारे 4 घंटे वेस्ट कर लिए, उसके बाद में हम ज्ञान योग करने लग गए, पढ़ने लग गए, कुछ और करने लग गए, पर टाइम तो वेस्ट हुआ, 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। तो ये खजानों की विशेषता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जिसके विषय में हमको चर्चा करना, ये तो थियोरी थी खाली, नाम गिनाना और विशेषता क्या है, मुख्य प्रश्न है अब करना क्या है। तो हमें 7 बातें करनी है इन सब के बारे में। और सबसे पहली बात है ये रियलाइजेशन कि हम खजानों से रिक्त हो गए, रियलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का इल्म, दरिद्रता का ज्ञान कि हम खजाने से खाली हो चुके हैं, या हमारे खजाने कम हो गए। जब व्यक्ति को यह पता चल जाए कि मुझे में ज्ञान अभी कम है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, तब कहीं शुरुआत होती है। मगरूरी नहीं आनी चाहिए। कुछ दिन पहले मुरली में था, सेंटर पर नहीं जाते, कहते हैं हमको तो पता है सारा ज्ञान। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन अहंकार। पहले तो ये पता चाहिए कि अभी गुणों की बहुत कमी है, पहले तो ये पता चाहिए कि अभी शक्तियां पूरी नहीं है, क्योंकि परिस्थिति आई तो सहन कर ही नहीं पाए, टूट गए, हार गए, गिर गए, थक गए, थोड़ी सी भी बात सहन नहीं कर पाए, पुण्य कर्म करते करते भ्रष्ट कर्म कर दिए बीच में, दुआएं प्राप्त करते करते बददुआएं प्राप्त कर ली, और पवित्रता का खजाना कब छिन गया पता ही नहीं चला। पहले तो ये रियलाइजेशन कि हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, खुशी कब गुम हो गई पता ही नहीं चला। तो इन खजानों में सबसे पहला काम तो ये करना है, रियलाइजेशन, गहरी महसूसता कि हमारे खजाने खाली हो गए, हम एकदम भिखारी, बेगर, आध्यात्मिक दरिद्रता से ग्रस्त है, स्पिरिचुअल पॉवर्टी, रूहानी गुर्बत जिसको कहते हैं। तो इसको गहराई से जानना है, क्योंकि जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा आगे कुछ नहीं होगा। इंग्लिश अंग्रेजी कविता एक मार्क ट्वेन, उसने अपने पिताजी के बारे में लिखा है। वो लिखता है जब मैं 20 वर्ष का था, उसने अपने पिताजी के बारे में लिखा कि मेरे पिताजी कितने बुद्धू है, कि कुछ भी समझ में नहीं आता इनको, कब सीखेंगे पता नहीं है। और जब मार्क ट्वेन 40 वर्ष का हुआ, तब फिर उसने अपने पिताजी के बारे में लिखा कि मेरे पिताजी इन 20 वर्ष में कितना सीख गए, कितने होशियार हो गए। होशियार वो नहीं हुए, होशियार ये हुआ है। अब उसको समझ में आया कि पिताजी पहले से कितने होशियार है। इन 20 वर्षों ने उसे कितना सारी चीजें बता दी, सिखा दी। अर्थात उसका जो पहले का ज्ञान था वो कम था, और ये समझने के लिए उसको 20 वर्ष लग गए कि मेरे पास कम ज्ञान है। कितना अच्छा हो कि पहले ही सब मान ले कि हमें तो अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और बार बार हम कहते हैं कि हमने जो जाना है वो सूचनाएं हैं, ये आत्मा, ये परमात्मा, ये परमधाम, ये सूक्ष्म लोक, ये ब्रह्मा, ये इसके तन में आया, ये 5000 साल का चक्र, ये सीढ़ियां, ये पुनर्जन्म, ये और पशु योनि में नहीं जाते, ये स्वर्ग, ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, कितना जाना है इसको। ये सूचना एकत्र करके रखी है। हम कहते हैं हम ज्ञानी। आज की मुरली में जौहर कहाँ है, कहाँ 20-50 रुपए की तलवार, कहाँ 100 और कहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार, जौहर ही नहीं है। तो खजाना, सबसे पहली बात रियलाइजेशन, महसूसता, गहरी महसूसता करनी है कि अभी प्यास जग जाए, जानना है, समझना है। जब ऐसी गहरी महसूसता के साथ हम बैठेंगे कल बाबा के सामने, तो आत्मा में कुछ भरेगा। अहंकार से भरेंगे तो कुछ नहीं भरेगा। बैठेंगे कि अभी बहुत समझना बाकी है, जो समझा है, जो जाना है, जहां तक पहुंचे है, वो केवल पत्थर की मील के पत्थर है, मंजिल नहीं। मंजिल तो वहां है, गंतव्य, डेस्टिनेशन अभी पहुंचे कहां है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, रियलाइज इस बात को। रियलाइज करने के बाद दूसरा काम, खजानों का महत्व। जिसके पास जितने अधिक खजाने हैं वो उतना अधिक शक्तिशाली है। जैसे स्थूल में जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा पावर होती है उसके पास, उसी तरह अध्यात्म के मार्ग में जिसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा खजाने हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली है। कौन से खजाने? सूक्ष्म खजाने, ज्ञान ज्यादा है, गुण ज्यादा है। स्थूल में कुछ भी नहीं है, गरीब है। इसके लिए तो कल कहा था साहूकारों को दंड मिला है, क्या नहीं समझ में आएगा उनको, नहीं समझ में आएगा उनको ज्ञान, ये दंड मिला है। एक साकार मुरली है बाबा ने, जिसमें कहा है, कोई कोई ऐसे आएंगे कहेंगे तुम्हारा ज्ञान कल्पना है, उनको क्या करो, साकार महावाक्य। कई आएंगे और तुमसे कहेंगे ये तुम्हारा ज्ञान जो है ना तुम्हारी कल्पना है, ऐसे को क्या करना चाहिए, बड़े प्यार और नम्रता से ऐसे को रवाना कर देना चाहिए। कभी नहीं समझेगा वो ज्ञान, बाबा के महावाक्य, प्यार और नम्रता से रवाना कर दो, उसके समझ में आने वाला नहीं है ये ज्ञान। साकार महावाक्य है ये बाबा के। तो इस खजाने के महत्व को जानना है। हम यहां आए थे खजाने से भरने, क्या कर रहे, भर रहे हैं कि खाली हो गए आने के बाद? समय, सारे दिन भर आज समय कैसे गया, बैठ बैठ के ज्ञान का चिंतन में थे कई बार दिन में अलग अलग समय पर, कि कुछ और ही कर रहे थे, वेस्ट चला गया। हमारी ड्यूटी, सेवा, कर्तव्य जो दिया गया वो, और ज्ञान, इसके अतिरिक्त कहीं और चीज में बुद्धि जाए ही नहीं। बस दो ही चीजें, जो ड्यूटी है, जो सेवा है, वो जैसे वो पूरा हुआ वहां से बुद्धि निकलकर सीधा ज्ञान योग में घुस जाए, बस। इसके अतिरिक्त ढेर सारी जो चीजें, ये खाऊं वो खाऊं, ये बनाऊं वो बनाऊं, इधर घूमू उधर घूमू, इससे बात करूं उससे बात करूं, यहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में क्या है उस डिपार्टमेंट में क्या है, ये भाई कहां गया, वो भाई कहां था, अभी तक था अभी तक दिखता नहीं, कहां चला गया। वॉट इज दैट टू यू, इंग्लिश में वाक्य है, तुम अपने काम से काम रखो, तुमको क्या करना है, उसका क्या हुआ, वो कहां गया, वहीं से तो व्यर्थ की कतार चल लग जाती है। जिन्होंने अपनी बुद्धि में बहुत सारी बातें माल भर के रखा है, ढेर बहुत माल है, तो ये माल नहीं, वखर है ये ज्ञान का, ये कहां बैठेगा। दूसरों की बातें ध्यान में रखिए, इसने ये कहा था उसने वो कहा था, इसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, अरे इसने ऐसा कहा उसने, बाबा ने आज मुरली में क्या कहा था कितना याद है, याद तो तब रहेगा ना जब कई हजारों बार उसको पढ़ा जाएगा, याद तो तब जाएगा रहेगा जब कई बार उसको रिवाइज किया है। केवल एक बार पढ़ने से एक बार सुनने से क्या होता है, कितनी बार उसको रिवाइज करना पड़ता है तब कहीं जाके एक हाथ महावाक्य अंदर जाके बैठता है, नहीं तो कहां समझ में आता है, कितना सूक्ष्म ज्ञान है, ठहरता ही नहीं बुद्धि में, तरावटी माल है, चौप चीनी मर्क्यूरी जैसा उड़ जाता है पारे मिसल। तो दूसरा काम क्या करना है, इस खजाने की महत्व की, ये खजाना बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसीलिए आए थे यहां पर, ज्ञान से भरने के लिए कितना भरा, योग से भरने के लिए कितना भरा, समय को वेस्ट न करने के लिए, और समय वेस्ट चालू है सारा, पुण्य कर्म करने के लिए कौन से कर्म कर लिए आज सारे दिन भर, दुआएं कमाने के लिए क्या कमाई, पवित्रता हमारा सबसे बड़ा खजाना है, क्या कर दिया, क्या देख रहे क्या सुन रहे क्या स्पर्श कर रहे, मन से संकल्प, संकल्प किसे स्पर्श कर रहे, शरीर को या आत्मा को, कितने हम बंधनों में फंसे हैं, जकड़े हुए, जितने अधिक बंधन उतनी वो पकड़ ज्यादा। आज की मुरली में अच्छे अच्छे महारथी समझने वाले, महावीर समझने वाले बच्चों को भी माया पकड़ लेती है, आज की मुरली में बड़े से बड़े बॉक्सिंग है ये, बाबा कहेंगे वो तो उल्टा ही करके दिखाएंगे, जो कहा उसके बराबर उल्टा करके दिखाएंगे, सब है यहां पर, युद्ध का मैदान है। तो दूसरा काम क्या करना है खजानों के साथ, महत्व, अपने आप को बताना है इससे अधिक महत्वपूर्ण और कोई काम नहीं है मुझे, बस यही आना यही करना है, बाकी सब छोड़ दो, अपनी सेवा है अपनी ड्यूटी अपनी कर्तव्य है वो किया ज्ञान योग बस। सेवा करने के बाद व्यक्ति जब अपने कमरे में जाता है वहां वो क्या करता है वास्तव में वो ही बताएगा वो है क्या, रिलैक्स हो गया है अभी क्या करता है उस समय, क्या सोचता है उस समय, कौन सी चीज उसे वहां खींचती है याद आती है सबसे पहले। तीसरा काम खजानों के साथ जो करना है वो है खजानों को ढूंढना है, ट्रेजर हंट, कहां मिलेंगे खजाने, ज्ञान का खजाना कहां मिलेगा, मुरलियों में, सारी अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करते रहना है करते रहना है, 73, 74, 76 सब 70s की वानियां 80s की वानियां, पहले 70s से चालू करो 70s की सारी पूरी करो, इधर से उधर उधर से उधर इधर से उधर उधर से उधर, इस डाली से उस डाली, अव्यक्त मुरलियों का जो वटवृक्ष है उसकी डाल डालियों पर डाल डालियों पर खेलते रहना है, सारी दिन बुद्धि सारा दिन बुद्धि यहां से वहां वहां से वहां वहां से वहां वहां से। कितने अलग अलग टॉपिक्स पर बाबा ने मुरलियां चलाई है, अथाह टॉपिक्स है और कितनी गहरी गहरी बातें। गुणों का खजाना कहां ढूंढेंगे, दूसरों में, इसमें क्या गुण है उसमें क्या गुण है उसमें, वो कितना नष्टमोह है, दूसरों में ढूंढना है इसमें वैराग कितना है, कितना अनासक्त वृत्ति है। हमको याद है दादी जानकी को एक बार हॉस्पिटल में प्रोग्राम हुआ था 3-4 साल पहले, बहुत सारे लोगों ने सब गिफ्ट दिया, किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी ने कुछ, सबने अपना अपना नाम लिख के बहुत सारा गिफ्ट दिया। फिर हम दादी को मिलने यहां आए थे तो दादी एक एक गिफ्ट सबको दे रही थी, सब बांट दिया, जरा उसमें ये भी नहीं ये मुझे मिला है, कुछ नहीं। अनासक्त, दूसरों से गुण उठाना है। तीसरा, शक्तियां कहां से उठाएंगे? बाबा से। अमृत वेला, आत्मा में पावर भरनी है, स्पिरिचुअल पावर्स। समय वेस्ट नहीं करने देना, संकल्प श्रेष्ठ बनाना, पुण्य कर्म करते रहना, दुआएं परिणाम है, अपने आप मिलती रहेगी। और खुशी हमारा सबसे बड़ा खजाना है। कहां से मिलेगी खुशी? की पॉइंट्स का चिंतन करने से। दुखों की पॉइंट्स का चिंतन करते बैठे, अतीत की बातों का चिंतन करते बैठे, हाय मैं, हाय मैं, संडे की मुरली, हाय बीपी, हाय दर्द, तो क्या करना पड़ेगा? गोली खानी पड़ेगी। और बाबा को साथ रखो तो कोई गोली खानी नहीं पड़ेगी, साथ लेके सो जाओ, ऐसा बोला है ना उस दिन। पवित्रता, कौन सी वो बातें हैं जो पवित्रता को भंग करती है? ट्रिगर, अपनी एक अपनी व्यक्तिगत लिस्ट निकालनी है, ट्रिगर फैक्टर्स। ट्रिगर अर्थात उत्तेजक, क्या है वो जिससे मन में हलचल चालू हो जाती है? क्या है वो? चित्र है, पोस्टर है, वीडियो है, पिक्चर है, मूवी है, क्या है? वस्त्र है, कोई याद है, कोई स्मृति है, कोई व्यक्ति है, कोई चेहरा है, क्या? और जो हो उसको हटा देना, क्योंकि वो बाधा है। चाहे व्यक्ति कितना भी प्यारा हो, सबसे अच्छा दोस्त हो, जीवन साथी हो, परंतु पवित्रता में बाधा बन रहा है, हटा दो। इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशनल डिवोर्स, मेंटल डिवोर्स तो जमा करना है। चौथा काम खजानों के साथ जो करना है वो है, खजाने जो जमा किए अब उनकी रक्षा करनी है। नहीं तो चोर डाकू घूम रहे हैं, माया सब जगह है, कब आ जाएगी? आ जाएगी आधी रात को, और खजाने चुरा कर ले जाएगी, व्यक्ति के रूप में आएगी जो हमारी खुशी को ही खत्म कर देगा। ऐसा कोई व्यक्ति आ जाएगा जिसके वजह से संकल्प चलने लगे। क्यों चलाने हैं किसी देहधारी के लिए संकल्प? हर एक यहां स्वतंत्र है, जिसको जो करना है वो करे। जहां अपेक्षाएं होगी वहां दुख होगा, जितनी ज्यादा अपेक्षाएं उतना ज्यादा दुख, जितनी कम एक्सपेक्टेशंस उतना कम दुख, और जीरो एक्सपेक्टेशन जीरो दुख, 100% एक्सपेक्टेशन 100% दुख। क्या चाहिए यह हमें डिसाइड करना है। और खुशी और एक्सपेक्टेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन, जीरो एक्सपेक्टेशन 100% सुख खुशी। तो खुश खजानों को क्या करना है? बचा के रखना है। अगला, खजानों को एक तो बताया था ढूंढना, फिर है जमा करना। एक तो ढूंढ लिया यहां मिलते हैं, अगली बात है जमा कैसे करना है। खजाने जमा जो होते हैं वो चिंतन से होंगे, खाली ढूंढने से मिल गया उतना नहीं, एकांत में जाकर ज्ञान की एक एक पॉइंट का गहराई में चिंतन करना, तब वो कहीं जाके अंदर जमा होते जाएंगे, उसके सिवा जमा नहीं होंगे। चलो जमा को इसको आप चौथा पॉइंट ले लो, पांचवा वो दूसरा वाला जो पहले लिया, ढूंढना और फिर जमा करना। जमा करना है खजाने को एकांत, मौन और चिंतन, अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर ज्ञान की पॉइंट को जमा करना है। योग में शक्तियां जमा होगी, योग में शक्तियां जमा होगी, कर्मों में पुण्य कर्म दुआएं जमा होगी। जमा करना है एक एक खजाने को, तो चौथा इसको ले लो, और पांचवा जो पहले कहा था, खजानों को रक्षा करनी है, एंटी थेफ्ट। उसके बाद में खजानों को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? उसको देकर, दो विधियां हैं, हम एक विधि यहां लेंगे। खजानों को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दे दो। ज्ञान कैसे बढ़ेगा? सुनाते रहो। तो ज्ञान के नए संस्कार क्रिएट होंगे यहां सुनाने के। वाक सिद्धि प्राप्त होगी कि जो हम कहेंगे उसमें शक्ति होगी। ध्यान सुनाते सुनाते गुणों को कैसे बढ़ाएंगे? गुणों का दान करके। शक्तियों को कैसे बढ़ाएंगे? शक्तियां विश्व को देकर, अर्थात सकाश अमृत वेले अशरीर होकर शक्तियां फैलानी है विश्व में, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं अमृत वेला। और कल तो बाबा आ रहे, अपने आप को सुबह से ही तैयार करना है, कोई टाइम वेस्ट ना हो, अमृत वेला बहुत अधिक शक्तिशाली हो, जितना हो सके मौन, जिनको सेवा ऐसी है कि जिसमें मौन रहा जा सकता है आराम से, वो हो सके तो चुप वाणी से वैराग आ जाए, शब्दों से वैराग आ जाए, शब्दातीत वाणी तीत। और जिनको इतनी इमरजेंसी नहीं है, मोबाइल को एक दिन के लिए मौन व्रत धारण करा दो, इसको बैच लगा दो यहां साइलेंस इसके गले में, जिनको कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, जो आराम से बंद रख सकते या साइलेंट रख सकते या कम दूर रह सकते एक दिन, तभी कहीं जाकर अब शाम को बहुत अच्छा अनुभव होगा। सारे दिन भर ही बुद्धि परम धाम में लटकी रहे याद की फांसी में, तो शाम को बहुत जबरदस्त अनुभव होगा। नहीं तो बुद्धि संसार में है, व्यर्थ बातों में, खाने पीने में लगी हुई है, तो कहां से अनुभव होगा? उपवास अर्थात उसके साथ वास करो, भगवान के साथ। इस्लाम धर्म में रोजा रखते हैं किस लिए? ताकि भगवान के नजदीक रह सके। जितना भोजन से दूर उतना भगवान से नजदीक, जितना भोजन के नजदीक उतना भगवान से दूर। तो क्या करना है? खजानों को बढ़ाना है, पुण्य कर्म करते जाना है निस्वार्थ भाव से, आत्माभिमानी स्थिति में अगर कर्म करो तो। आज सुबह ये क्या था महावाक्य? तो क्या होगा? देही अभिमानी बनकर कर्म करो तो सफलता मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी। और लास्ट पॉइंट, खजानों को यूज करना है। एक बताया दान करो, छठवा लास्ट खजानों का प्रयोग करना है। जैसे ज्ञान की कोई पॉइंट हमको पता है, अब उसका प्रयोग करो, मुरली में आई है ऐसा है, उसका प्रयोग करके देखो। गुण एक पता है, अब इस गुण का प्रयोग करके देखना है, सहनशील, कितना सहनशील रह पाते। मुरली के महावाक्य है बाबा के, अब लाओ पर अत्याचार होते, यदि कोई मारे तो बुद्धि में याद रखो शिव बाबा, अगर कोई मारे तो बुद्धि में याद रखो शिव बाबा। और अत्याचार हो गए अब लाओ पर, तो ऐसे सात काम करने। सबसे पहला बताया ज्ञान का रियलाइजेशन, कि हमने अभी तक कुछ नहीं जाना है, इतनी मुरलियां पढ़ ली पर बुद्धि में पता नहीं कहाँ चली गई है, ही नहीं कुछ, अभी पढ़ जा। और फिर नया संकल्प करना है कि अभी ही करना है। जैसे कल जो शाम को अव्यक्त वाणी चलेगी, अभी से तैयारी करनी है, अभी से अमृत वेला ही बाबा से पूछना, बाबा आज आप क्या सुनाने वाले हो, और अपने मन में थोड़ी सी क्या टचिंग आती है देखना, और फिर रात में वेरीफाई करना कि वही टॉपिक चला कि कुछ और चला। हमने सोचा था बेफिक्र बादशाह, उधर चली फरिश्ता, उल्टा हो गया। हमने सोचा था ये कर्मातीत पर चलेगी, उधर चल रही दुआओं पर। कनेक्शन जोड़ के कैसा है वो देखना है सुबह सुबह, और अपने मन को सुबह से तैयार करना है शाम के लिए, जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण काम होने वाला है शाम, रादर हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो कुछ है ही नहीं संसार में, भगवान आ रहा है धरा पर। हम तो इसमें आए किस लिए? यज्ञ में एक ही तो काम था, अतिंद्रिय सुख से भरपूर करने, गोप गोपिया हम हैं, ये नहीं किया बाकी सब किया, सेवाएं बहुत की, सब कुछ किया और आनंद से नहीं भरा, तो क्या कहेंगे? तो पहला काम हमने नहीं जाना, अभी जानेंगे। दूसरा काम अमहत्व इस खजाना बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके पास खजाने नहीं है उनकी हालत देखो कैसी है, कितने दुखी है वो ब्राह्मण जो ज्ञान मुक्त और योग मुक्त है और माया युक्त है, कितने दुखी है, कितने परवश है, कितना व्यर्थ में है, कितना परचिंतन में है, कितनी बुद्धि भटक रही है। कल की मुरली में ऐसा ही एक महावाक्य था ना कि क्या बाबा को 1% भी क्या था, याद करने से रिलेटेड था शायद, ऐसे ही कुछ था ना, याद करने से रिलेटेड था। एक बड़ा अच्छा वाक्य था। हाँ, बहुत है जो ज्ञान का ग भी नहीं जानते, ज्ञान का ग भी नहीं जानते, बस ऐसे ही बैठे रहते। तो तीसरा काम क्या करना है, ज्ञान को ढूंढना है, खजाने को, ट्रेजर हंट, खोज चालू करनी है, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, उसके बाद में जमा करना है, एकांत में जाके मौन में जाकर उसके ऊपर चिंतन करते करते अंदर अंदर भरना है, उसके बाद में उसको उसकी रक्षा करनी है, वो फैक्टर्स निकालने हैं, वो हर सारी लिस्ट बनाओ, वो कौन व्यक्ति है जो आके रोज खजाना छीन के जाता है, ये उंगलियां जो है ना बड़ी चंचल है, बड़ी चंचलता करती है ऐसे ऐसे। हॉस्पिटल में बच्चों का वार्ड जो होता है, छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ लाइन रहते हैं ना, निकाल लेते हैं तो उनके हाथ बांध के रखते हैं ऐसे, बॉक्सिंग बैंडेज ऐसा हाथ बांध देते हैं, अब कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे घुमाते रहता है बस, क्योंकि लाइन है वहां पर। तो अभी सबको बॉक्सिंग बैंडेज की जरूरत है, इसमें कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ टाइप, कुछ ना कुछ ढूंढना, कितना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ करते, बॉक्सिंग बैंडेज। अब करो अगला काम, इस खजाने को बढ़ाना, कैसे बढ़ाएंगे, देकर। और लास्ट काम, इस खजाने को प्रैक्टिकल में यूज करना, जब जब समय मिले, टाइम मिले, याद रखना है कि ये खजाना है, ये ट्रेजर है, इसको मुझे यूज करना है। तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें कारून का खजाना मिला है, कुबेर का खजाना मिला है, अथाह खजाना मिला है, अविनाशी खजाना, अलौकिक खजाना, रूहानी खजाना मिला है। तुम जैसा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड दुनिया में और कोई नहीं है, तुम ही हो बस। तो अपने आप को मनसा में तैयार करना है, कल सुबह जो साकार, पहले तो अमृत वेला बहुत पावरफुल, उसके बाद में जो साकार मुरली चलेगी पूरा दिन भर उस साकार मुरली का चिंतन करते रहना है ताकि बुद्धि ऊपर रहे, और शाम को जो अव्यक्त वाणी चलेगी, अव्यक्त वाणी जब चल रही है तब भी योग के अलग अलग प्रयोग बैठे बैठे ही करते रहना है, और वाणी पूरी होने के बाद उसकी डेट तब तक पता चल जाती है, ढूंढो कौन सी डेट की मुरली चली थी, उस मुरली को निकालो, और रात में सोने से पहले वो मुरली पढ़ के होनी चाहिए जो मुरली शाम को चलेगी, क्योंकि मुरली तुरंत पूरा होने के बाद डेट पता चल जाती है, होने के बाद तब तक नहीं पता चलती है। तो रात को मुरली सोकर पढ़कर ही सोना है। तो सारे दिनचर्या की अपनी कल की प्लानिंग बनानी है। अच्छा, ओम शांति।
मिलन की तड़पन अजब थी, उलझन मचल रही थी दिल की धड़कन,
अगर न मिलता हमें सहारा ये जिंदगी उदास थी, हमें मिल गया प्राणों से प्यारा, अब तक जिसकी तलाश थी
यही है, जिसकी तलाश थी
यही है, जिसकी तलाश थी, जग सारा मिल दिल ये झूम जाता है,
जग सारा मिल जाता है हर दिल ये झूम जाता है। जाना रहा ठिकाना, कुबेर का मिल गया खजाना।
प्यार प्रभु का बुझा रहा जो जन्म जन्म की प्यास थी, हमें मिल गया प्राणों से प्यारा। अब तक जिसकी तलाश थी
यही है जिसकी तलाश थी,
यही है जिसकी तलाश थी। जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है।
जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है। चाहा था मिल गया है, भगवान तेरा शुक्रिया है।
बचा लिखे वैया ने नैया, दुनिया हो गई निराश की, हमें मिल गया प्राणों से प्यारा। अब तक जिसकी तलाश थी
यही है जिसकी तलाश थी,
यही है जिसकी तलाश थी। जग सारा झूम जाता है,
जग सारा मिल गाता है, हर दिल ये झूम जाता है।
हमें मिल गया प्राणों से प्यारा, अब तक जिसकी तलाश थी
यही है जिसकी तलाश थी,
यही है जिसकी तलाश थी,
यही है जिसकी तलाश थी, यही है जिसकी तलाश थी, यही है जिसकी तलाश थी।